तंग चाकी ताई दाढ़ा दिल तंग चाकी ताई दे दे तू प्यार में तू यार मेरा सोना सोना माई मेरा सोना सोना प्यार मेरा सोना सोना दे दे तू प्यार में तू यार मेरा सोना सोना माई मेरा सोना सोना प्यार मेरा सोना सोना
listening to WTOR 770 AM Youngstown Toronto
अपने प्यारों को पैसे भेजें लैम्पफाई के जरिए पैसे पहुंचे मिनटों में वो भी आसान और महफूज तरीके से गुड एक्सचेंज रेट के साथ $150 भेजने पर $0 फीस इसके अलावा अगर आप $100 से ज्यादा भेजें तो साइन अप करते वक्त रेफरल कोड E10 इस्तेमाल करें और अपनी पहली ट्रांजैक्शन पर 10% कैशबैक हासिल करें यानी $500 भेजने पर $50 कैशबैक की सूरत में आपके अकाउंट में वापस लैम्पफाई की 10% कैशबैक ऑफर के लिए आज ही लैम्पफाई की फ्री ऐप अपने फोन में डाउनलोड करें विजिट lamfy.com फॉर टर्म्स एंड कंडीशंस
फेडरल इलेक्शन सोमवार 28 अप्रैल में हो रही है यकीनी बनाओ कि तुसी वोट पाउण लई रजिस्टर्ड हो जे तुसी रजिस्टर होए हो तां तुहानू डाक विच एक वोटर जानकारी कार्ड मिलना चाहिदा है ए तुहानू दसदा है कि तुसी किथे अते कदों वोट पा सकदे हो जे ए तुहानू 11 अप्रैल तक प्राप्त नहीं हुंदा है जे इससे दित्ती जानकारी गलत है तां elections.ca ते जाओ ए साडी वोट है वोटिंग बारे दोनों दी अधिकारित जानकारी वास्ते elections.ca ते जाओ जा 1-800-463-6868 ते कॉल करो
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल या ऑटोमेटिक क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी आहो जी कोई अपॉइंटमेंट नहीं ड्राइव थ्रू फैसिलिटी एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप 519-622-0660 या quicktrucklube.com QTL बिकॉज़ वी केयर
अपनी कम्युनिटी का सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है
ओ फिर बने भी क्यों ना क्योंकि बेडरूम सेट सोफा सेट मैट्रेसेस डाइनिंग टेबल डेकोरेटिव आइटम्स गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो 3 साल ले नो ब्याज
142 कैनेडी रोड ब्रैम्पटन 9058747171
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह हर साल वांग इस वरे भी ओंटेरियो सिख एंड गुरुद्वारा कौंसल वालों खालसे दा साजना दिवस डाउनटाउन टोरंटो विखे होवेगा जो सवेरे 9 बजे CNE दे प्रोग्राम तो शुरू होके 1 बजे नगर कीर्तन सिटी हाल नु रवाना होवेगा समुची साध संगत नु हुम हुमा के इस नगर कीर्तन विच शामिल होने की निम्रता सहित बेनती की जाती है
इस साल नगर कीर्तन डाउनटाउन टोरंटो दे विच 27 अप्रैल नु होण जा रहे ने किसी भी जानकारी वास्ते अपने लागले गुरुद्वारा साहब नाल तुसी संपर्क कर सकते हो
मेरी पूरे साल की सेविंग $400 हुई है
मेरी सेविंग $350
मेरी सेविंग सिर्फ $100
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है। मैंने सेव किए हैं $1,775।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुड़ सिखाओ ना।
भाई बात सादा सी है, हमारे पास 2 गाड़ियाँ और 1 घर है और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर के इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह
6 4 7 2 9 0 3 7 7 3 6 4 7 2 9 0 3 7 7 3 6 4 7 2 9 0 3 7 7 3 6 4 7 2 9 0 3 7 7 3 6 4 7 2 9 0 3 7 7 3 6 4 7 2 9 0 3 7 7 3 6 4 7 2 9 0 3 7 7 3 6 4 7 2 9 0 3 7 7 3 6 4 7 2 9 0 3 7 7 3 6 4 7 2 9 0 3 7 7 3 6 4 7 2 9 0 3 7 7 3 6 4 7 2 9 0 3 7 7 3 6 4 7 2 9 0 3 7 7 3 6 4 7 2 9 0 3 7 7 3 6 4 7 2 9 0 3 7 7 3 6 4 7 2 9 0 3 7 7 3 6 4 7 2 9 0 3 7 7 3 6 4 7 2 9 0 3 7 7 3 6 4 7 2 9 0 3 7 7 साल बाद सब खत्म
की किड्डा
मार्क कार्नी एट लिबरल्स कार्बन टैक्स आसमान वो छूंदिया फ्यूल प्राइसेस कंपनी साउथ वाल मूव कर रही हैं ट्रकिंग दा बिजनेस खतरे चे
इस चलाक बैंकर नेता कनेडियन जॉब्स यूएस भेज दितियां ट्रंप दे सामने एक कमजोर है हुन होर जॉब्स खत्म हो जानगिया
कॉमन सेंस कंजर्वेटिव कार्बन टैक्स दा खात्मा करनगे ते नौकरियां लेके आउणगे
कार्नी ते भरोसा नहीं किया जा सकता मैं तो पीएफ पॉली एफ नु ही वोट पाऊं
दिस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय द कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कैनेडा
770 AM دی نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو با خبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسس الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com لوکل نمبر 6478724900 कौन कहता है कि इंश्योरेंस कंपनियां वक्त पर क्लेम अदा नहीं करती एक और मिसकंसेप्शन कि लाइफ क्रिटिकल इलनेस डिसेबिलिटी या फिर ट्रेवल इंश्योरेंस बहुत महंगी है नहीं साहब आप एक बार इंश्योर प्रो के फजल वदूद से बात कीजिएगा 28 इयर्स ऑफ अंडररराइटिंग एक्सपीरियंस एंड 2 इयर्स इन द फील्ड लाइफ क्रिटिकल इलनेस डिसेबिलिटी ट्रेवल इंश्योरेंस हर इंश्योरेंस के मामले के लिए Fazal Wadood of Insured Pro 905-607-5000
416-502-8000 स्ट्रेस चाहे लाख का हो या काख का उस जिंदगी मुश्किल कर देता है बाकी बातें एक तरफ आपके फाइनेंशियल स्ट्रेस का हल है शिराज शफीक जिनके पास है मिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्राइवेट फंड्स लास्ट मिनट क्लोजिंग्स हो या डिफिकल्टीज सभी के लिए शिराज शफीक 416-502-8000 लाइसेंस नंबर 10845 इंडिपेंडेंटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड
अकाल 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 मॉर्गेजेस
ओपन माइक कैफे एंड कुजीन जहां आपको मिलेंगे मजेदार खाने जैसे कि लाहौरी गोट कड़ाही शिनवारी गोट कड़ाही निहारी हलीम पाए बिरयानी सीख कबाब चिकन टिक्का शवरमा पिज्जा और मजेदार लाहौरी छोले पालक पनीर और बहुत सी वेजिटेरियन ऑप्शंस। ओपन माइक कैफे एंड कुजीन वही देसी अंदाज और वही देसी जायका 1310 दंदा स्ट्रीट ईस्ट मिसिसागा यूनिट 3 ऑर्डर नाउ कॉल 416-526-6800
इन सब कामों के लिए तो मुझे बैक होम ही जाना पड़ेगा
कौन से काम
वही बेटी की शादी सर पर है और ज्वेलरी का खास काम अभी तक नहीं हुआ
बस इतनी छोटी सी बात पायल ज्वेलर्स पे हर किस्म की ज्वेलरी है और वो स्पेशलाइज करते हैं इन सब में ही दुबई सिंगापुर इंडिया पाकिस्तान और यहाँ की तमाम लेटेस्ट ज्वेलरी
मुझे उनका एड्रेस बताओ मैं आज ही ये काम जाके करवाती हूँ
जी जी बिल्कुल पायल ज्वेलर्स का एड्रेस है 2720 नॉर्थ पार्क ड्राइव यूनिट 42 ब्रैम्पटन पायल ज्वेलर्स के असलम भाई को कॉल करें ना एट 905-790-7879 दैट इज
905-790-7879
वेलकम बैक तमाम सामीन जो हमें सुन रहे हैं 770 AM डायल पर प्रोग्राम साजो आवाज। मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद और जनाब अब टाइम हो गया है आपको गर्मा गर्म अब तक की ताजा तरीन और गर्मा गर्म खबरें सुनाने का, और उसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में शामिल हो जाती हैं शाजिया मलिक साहिबा। तो आइए सबसे पहले उनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
WS तुम ये कॉन्स्टेंटली कंजर्वेटिव बन के क्यों आ रहे हो भाई? ये क्या तुमने पहली है उनकी पार्टी से?
एड चलते हैं ना बहुत।
तुम इम्प्रेस यानी के हो गए हो?
देखे जी सर,
ओ हो
अव्वल तो कोई पार्टी नहीं, ये जो पार्टी बिजनेस को सपोर्ट कर रही है हम उसको सपोर्ट।
हाँ देखो मेरी बात सुनो, ये जमाना बड़ा खतरनाक है, डिस्क्लेमर जरूर चलाया करो, वरना हम जैसे मासूमों को तो लग रहा था तुमने उनसे लिफाफा ले लिया है, इसलिए तुम रो। हाँ देखो ये अंदर की बातें,
जर्नलिस्ट है ना अपनी खबर खुद ही बना लेता है
यार,
क्योंकि उसको वो शॉर्ट हैंड राइटिंग एक्सपर्ट होता है।
हाँ हमें तो सिखाया जाती थी, हमें सिखाई थी कि जिस वक्त आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना है तो आपने पूरा नहीं लिखना, ऑन दिस ओकेजन शॉर्ट हैंड हमें सिखाया जाता था। बिल्कुल हाँ हाँ हाँ,
तो आप उसमें लिख लेती हैं।
हाँ
मसला है कि उसी को पढ़ भी देती है।
वही तो वो जैसे जैसे बोल रहे होते थे वैसे वैसे लिख रहे होते थे, क्योंकि हमको शॉर्ट हैंड सिखाते थे वो लोग।
बिल्कुल ये सर ट्रेनिंग का हिस्सा,
ये ट्रेनिंग का हिस्सा, क्योंकि वो कहते थे आप पूरी फिर स्पीच लिख नहीं सकोगे, क्योंकि हर किसी के पास तो वो जो होता था ना, हमारे पास वो 1945 रॉयटर्स वालों का रिकॉर्ड, रॉयटर्स वाले यूज करते थे 1945 की वॉर में, तो वो जो रिकॉर्डर था वो स्पेशल होता था, वो किसी किसी के पास वो भी होता था, वो हर किसी के पास नहीं होता था। तो फिर इसलिए वो शॉर्ट हैंड सिखाते थे कि अगर तुम्हारे पास कभी वो
मेन कीवर्ड्स लिख ले, पॉइंट्स
वो लिखो, और तुम आमिर यकीन करो वो इतनी जबरदस्त वो टेक्निक है, मजाल है कि आपका कोई एक भी लफ्ज इधर का इधर हो। हाँ हाँ एज इज हमें सिखाते। और फिर पता क्या होता था, कभी कभी क्या होता था कि कभी कभी जैसे हमारे एडिटर्स वगैरह थे ना, जैसे फहद हुसैन थे हमारे एडिटर, फिर बाद में टॉमस हुसैन आ गए, तो वो कहते थे कि नहीं ये तो मुझे सेंटेंस ठीक नहीं लग रहा है ना, तो ये जो तुमने लिखा है, क्योंकि उसने वैसे ही बोला होता था और हम लोगों ने भी वैसे ही लिखा होता था, तो कभी कभी वो कहते थे कि नहीं ये स्ट्रक्चर जो है सेंटेंस का सही नहीं बन रहा है, तो ये तो हम उनको कहते थे कि हम ये स्ट्रक्चर इसलिए नहीं इसका चेंज कर सकते, क्योंकि जो उन्होंने बोला है हम कोट्स में लिख रहे हैं ना, अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो फिर हम उसकी अंग्रेजी ठीक करके उसको लिखेंगे, हाँ ये कोट अगर है तो उसमें एज इज लिखना पड़ेगा। तो कभी कभी फहद साहब कहते थे नहीं नहीं ये तो मुझे नहीं लग रहा, तो फिर वो किसी और जैसे डॉन में ना, वो जो उनके यार दोस्त थे सारे एडिटर्स तो सारे दोस्तों ने उनमें उनको फोन करते थे, तो वो कहते थे यार ये जरा चेक करो ऐसे, यार डॉन तो मैंने वैसे ही बोल दिया, कहीं पे भी जैसे उन्होंने जो उनको जो जिसको वो जानते थे उसको उन्होंने जैसे फोन किया कि भाई ये सेंटेंस एक आया तो ये क्या ऐसे है और ये क्या
सीनियर से बंदा को करता है, कंसल्ट करता
है, जैसे ऐसे पूछा सीनियर से नहीं यारों दोस्तों,
यार दोस्तों
तो भाई ये तुम्हारे पास भी रिपोर्ट आई होगी तो ये इसका ये ऐसे ही है, तो फिर वो जब उसको वो कहते, वो कहते थे अच्छा चलो ठीक है ये वैसे भी कोर्ट्स में जा रहा है और वो ऐसे, तो यानी आप सोचे कि इतनी एक्यूरेसी होती थी। मुझे तो यहां पे इतनी हैरत होती है लोग किस तरह से जर्नलिज्म करते हैं, कोई भी इधर रेडियो टीवी पे बैठ के कुछ भी बात कर देता है। आपको पता है जब हम लोग रिपोर्ट्स लिखते थे कितनी दफा वेटिंग होती थी उसकी, जैसे टॉमस हुसैन साहब थे, जब मैं एक दफा वो इंटीरियर मिनिस्टर का वो जो थे मुइनुद्दीन हैदर साहब, जनरल मुइनुद्दीन हैदर, उनका मैं इंटरव्यू लेकर आई, तो बहुत सेंसिटिव चीजें थी, लेकिन अच्छी बात क्या थी, क्योंकि वही ट्रेनिंग का हिस्सा है ना, ट्रेनिंग की भी थी कि जब भी बड़े लोगों के पास जाना है लिखना कुछ नहीं है, सब रिकॉर्ड करके लाना है, इंटरव्यू बड़े आदमी का हमेशा रिकॉर्ड करके लाना है, लिखना बिल्कुल कुछ नहीं है, बेशक तुमने शॉर्ट हैंड सीखा हुआ या जो भी, तो हम लोग रिकॉर्ड करके लाते थे, तो क्योंकि कभी कभी एडिटर नहीं, कभी कभी तो न्यूज एडिटर ही पूछ लेता था कि हाँ भाई तुम्हारी ये जो स्टोरी फ्रंट पेज पे जा रही है ये बताओ जरा ये क्या है, किधर है ये स्टोरी, मुझे तो मैं पहले सुनूंगा, है ना मैं सुनूंगा पहले, इससे पहले कि हम छापे, तो वो थी, तो वो उनको मैंने कहा कि मेरा सारा रिकॉर्ड हुआ है, कहते हैं अच्छा फिर भी तुम ठहर जाओ, तुम जरा ठहर जाओ, तुमने जो स्टोरी लिखी है ये बहुत सेंसिटिव है, ये पेज वन पे जा रही है, और क्योंकि आपको पता ही है कि वो उस जमाने मुशर्रफ साहब के जमाने में वैसे भी नवाब वक्त गुरुसे नरबड़े नाराज थे वो लोग, क्योंकि उनको पता था कि ये जो है नवाज शरीफ के साथ ज्यादा अलाइन करते हैं, ये लोग ज्यादा अलाइन करते हैं, तो उन्होंने फिर फोन किया इंटीरियर मिनिस्ट्री में, उन्होंने कहा ये जो हमारी एक वो है कॉरेस्पॉन्डेंट है वो ये सारा ये स्टोरी लेकर आई है, तो क्या ये सच है, ऐसा है, तो इंटीरियर मिनिस्ट्री से फिर उनको बताया उन्होंने कि हाँ जी ये बिल्कुल ठीक है, ये ऐसे ऐसे ही है, तो उन्होंने कहा कि उसने लिखा हुआ है कि एक अननोन इंडिविजुअल, जैसे एक वो था कि उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन इंटीरियर मिनिस्टर को दी और वो, तो उन्होंने तो फिर नाम भी उनको रिवील कर दिया, तो फिर क्योंकि वो तो एडिटर थे, हाँ तो वो फिर उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हारा इंट्रो जो है वो मैं लिखूंगा, और बेशक पूरी स्टोरी पे तुम्हारा नाम जा रहा है और तुम तो, लेकिन ये यानी इंट्रो आपको पता ना क्या होता है, जैसे स्टोरी जैसे स्टार्ट करते, तो उन्होंने कहा इंट्रो मैं तुम्हारा लिखूंगा स्टोरी का और फिर उसके बाद जो है तुम्हारी सारी स्टोरी वो नीचे। तो इस तरह होता है, लोग बहुत वेटिंग करते हैं पता है, जो अच्छे न्यूज़पेपर्स या वो होते हैं, जैसे आपको पता है न्यूयॉर्क टाइम्स वाशिंगटन पोस्ट का अक्सर मैं जिक्र करती हूं कि जी ये उन्होंने स्टोरी, वो ऐसे ही नहीं छाप देते हैं, वो एडिटर से जो जो नीचे ना बहुत सारे लेवल्स होते हैं एडिटर्स के, पेज एडिटर होता है, फिर न्यूज एडिटर होता है, फिर उसके बाद जो है एडिटर इन चीफ होता है, तो फिर उस तक चीज जाती है। तो लोग हर लेवल पे चेक के सबूत कहां है, किसने तुम्हें दिए, अच्छा जी एफबीआई ने दिए, एफबीआई के किस बंदे, उनको पता होना चाहिए कि एफबीआई के उस बंदे का क्या नाम है। आपने स्टोरी में बेशक नहीं लिखना लेकिन ऑफिस में पता होना चाहिए कि अच्छा जी एफबीआई के आमिर अहमद ने मुझे ये स्टोरी दी है, कहां है डॉक्यूमेंट, जी ये डॉक्यूमेंट, तो देन वो कहते हैं कि हाँ ठीक है प्रूफ हमारे पास है तो नाउ वी विल पब्लिश दिस स्टोरी। वो उन्होंने प्रूफ और बाहर दुनिया में किसी को नहीं दिखाना होता लेकिन उनके अपने पास
कल को कोई लीगल एक्शन हो जाए तो लीगल एक्शन, तो आपके पास
तो जी अदालत में वो लेके चले जाए देखो
लीगल फाइटिंग के लिए,
लीगल फाइटिंग,
क्योंकि वो खुद से तो न्यूज जनरेट कर नहीं रहे,
नहीं कर रहे हैं,
वो जो आसपास खबरें चल रही हैं सुन रहे हैं उसी के ऊपर आर्टिकल्स भी लिखे जा रहे हैं, उसी की रिपोर्टिंग भी हो रही है, उसको वेरीफाई करने के लिए, और
वेरिफिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा
बिल्कुल 100% ऐसे ही है।
ठीक है जी चलो हम शुरू करें,
और हम मैं आपको बता देता हूँ 7:05 पर हमारे साथ जो है वो सलमान अहमद साहब होंगे
जी जी,
दी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका,
दी पाकिस्तान से नहीं।
तो उन सुना है
हाँ।
कि उनके ऊपर भी पीका
है,
अमरीका में बैठ के भी हाँ। पीका एक्ट सुना है कि भाई उनके ऊपर लग गया
हाँ।
तो ये सारी तफसीलात आपने हमारे साथ ऐसे जुड़े रहना 7:05 बस 7 बजे आप तैयार रहिएगा, हम 2-4 मिनट ऊपर जो है टॉप ऑफ द आवर के बाद सलमान को अपने प्रोग्राम में
हाँ।
शामिल करेंगे। तो शाजी गर्मा गर्म खबरें जो है
हाँ।
सुना
दें। हम शुरू कर लेते हैं जनाब, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय सुल्तान भाई, सुल्तान भाई के पास होते हैं बंडल डील्स, आप उनके पास जाओ और बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आओ, अच्छा खाना खाना है फैसल चटर्स आपके पास जाओ, 2 रेस्टोरेंट्स हैं उनके मिसेस आगा और ओकविल में, विलेज टेस्ट है उनके रेस्टोरेंट्स का नाम, जाएं खाने में एंजॉय का मजा लें, दांतों का काम करवाने डॉक्टर नाजिया रहमान के पास जाएं, या तो मिसेस आगा के क्लिनिक पे जा सकते हैं या रिजवे में जा सकते हैं, उनके पास आप जाइए और सारी दांतों की सुविधाएं ले लीजिए। और अगर आपको आपके ट्रक को आप चाहते हैं कि वो भागता फिरे सड़क के ऊपर, फिर आप क्विक ट्रक ल्यूब पे जाएं और वहां पे बहुत अच्छे ऑयल्स डलवाएं और आप अपने ट्रक की जो हेल्थ है उसको अच्छा रखें, और अगर आपको अच्छे इटालियन वुल के कपड़े चाहिए है तो आपको जाना पड़ेगा स्पेयर एंड मके पे, और जनाब हमारे जो अदनान अलवी साहब हैं वो बहुत अच्छे आपको देते हैं जो इंश्योरेंस के सुविधाएं हैं, तो आप उनके पास जाइए, वो आपको इन्वेस्टमेंट के तरीके बताएंगे, लाइफ टाइम ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, आप जाएं आपको बताएंगे। राजा बादशाह जी आपको होम और ऑटो इंश्योरेंस चाहिए तो राजा बादशाह के पास जाइए। ठीक है जनाब, अच्छा जनाब हम फिर आज आपको सबसे पहले तो शुरू करेंगे क्योंकि इलेक्शन चालू है यहां पे, तो रोज नैनो का रिसर्च आता है तो उस सिलसिले में हम आपको बताएंगे। लिबरल्स का एडवांटेज जो है अभी भी जो कंजर्वेटिव्स है उसके ऊपर 5 पॉइंट से आगे वो लोग चल रहे हैं, एंड दिस इज डे 17 ऑफ द इलेक्शंस पर नैनोज रिपोर्ट, और लिबरल्स जो है वो 43% सपोर्ट के साथ आगे चल रहे हैं, कंजर्वेटिव 38%, एनडीपी 8%, वो कहते हैं जी 25 ईयर्स में इतना लो इनका कभी भी नहीं गया था, 2000 के जो हुए थे फेडरल इलेक्शन उनमें इनका इतना लो था, ब्लॉक के बैकवा 7% पे है, ग्रीन्स जो है वो 3% पे, पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा 1% पे, लेकिन कंजर्वेटिव जो है उन्होंने कुछ गेन्स शो किए हैं ऑन्टेरियो के अंदर, अब वो 41% पे बैठे हुए हैं, लिबरल्स 48% पे, और लिबरल्स लीड कर रहे हैं वही जैसे कि हर रोज हम आपको बताते हैं एक्सेप्ट फॉर प्रेरीज, प्रेरीज में कंजर्वेटिव पार्टी अभी भी आगे चल रही है 59% पे, लिबरल्स हैं 31% पे, क्यूबेक में जो है फिर से इनका लीड है 42% पे है लिबरल्स, कंजर्वेटिव 19%, ब्लॉक क्यूबेक ने अलबत्ता बहुत गेन किया 29% पे आगे है, एनडीपी जो है बीसी में उनको सबसे ज्यादा सपोर्ट है लेकिन फिर भी 18% ही है, वहां पे नंबर वन फिर से लिबरल्स है 42% है, कंजर्वेटिव 32%, एंड अगर प्रेफर्ड पीएम का बोला जाए तो कॉर्नी साहब के पास 49% सपोर्ट है, पीए पॉलीएव साहब के साथ पास जो है 32%, और जो नंबर ऑफ मेन जो बोलते थे कि हम कंजर्वेटिव के लिए ज्यादा वोट करेंगे अभी वो राइज करना शुरू हो गया लिबरल्स के लिए, तो वो अभी 39% है, लेकिन अभी भी मेन जो है वो कंजर्वेटिव को ज्यादा पसंद करते हैं 46% के ऊपर। आज हमारी जो कनाडा की बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है मगिल, उनका अब काफी झगड़ा चल गया है, और मगिल जो है उन्होंने बोला है अपने स्टूडेंट्स यूनियन को कि ये जो आपने 3-डे प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट किया था कैंपस के ऊपर लास्ट वीक, तो उसके लिए हमें आपके साथ बैठ के जो है वो डील्स बनाना पड़ेगा। वहां पे यूनिवर्सिटी के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बोला कि हम बिल्कुल आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच को एंडोर्स करते हैं, लेकिन हम ये बिल्कुल एंडोर्स नहीं करेंगे कि आप वेंडलिज्म करो, इंटिमिडेशन करो और ऑब्स्ट्रक्शन करो या एक्टिविज्म जो है इस तरह का शो करने की कोशिश करो, तो उसका हम इजाजत नहीं देंगे। अभी जो है इनके जो एक डिपार्टमेंट है स्टूडेंट सोसाइटी ऑफ मगिल, वो बहुत सारे फैसिलिटीज देते हैं स्टूडेंट्स को, जैसे कि इनको ग्रोसरी प्रोग्राम उन्होंने चलाया हुआ है, हेल्थ का है, एजुकेशन में बहुत सारा सर्विसेज देते हैं, सेक्सुअल वायलेंस का एक सेंटर है, तो इस तरह के बहुत सारे सर्विसेज देते हैं। अगर ये डील इनका यूनिवर्सिटी के साथ नहीं हुआ यानी कि स्टूडेंट्स यूनियन का, तो फिर इनको अपने यूनियन के नाम से मगिल का नाम खत्म करना पड़ेगा और ये सारे जो सहूलतें हैं वो भी स्टूडेंट्स नहीं ले पाएंगे। तो अभी देखना है, मगिल की जो इंटरिम डेप्यूटी प्रोवोस्ट है एंजेला कैम्बल और प्रेसिडेंट जो है दिमित्री टेलर, उन्होंने कहा जी कि हम नेक्स्ट टू वीक्स में ये नेगोशिएशन शुरू करेंगे और ये चलते रहेंगे जून के एंड तक, और उसके एंड पे अगर कुछ डील नहीं बना तो फिर ये सारा कुछ इनको करना पड़ेगा। विंटर जनाब फिर से वापस आ गया है ऑन्टेरियो के अंदर और एनवायरमेंट कैनेडा ने बहुत सारा अलर्ट जो है अभी इशू कर दिया है लंडन, टोरंटो, साउथ जॉर्जियन बे के लिए। इसके अलावा वो कह रहे हैं वहां पे तो 5 सेंटीमीटर स्नो आने वाला है, लेकिन ओवन साउंड के अंदर 10 सेंटीमीटर आएगा स्नो फॉल आएगा। ओपीपी जो है उसने भी ड्राइवर्स को आज सुबह कहा था कि आप बहुत सावधान तरीके से यानी कि बहुत एहतियात से आप चलो। टोरंटो पुलिस ने बहुत सारे क्रैशेज इंक्लूडिंग 6 व्हीकल क्रैश जो था साउथ बाउंड डॉन वैली पार्कवे के अंदर अनाउंस किया था, उसकी वजह से बहुत देर तक बहुत सारा लेन्स जो था वो क्लोज रहा। 35,000 जो है इसकी वजह से, जो लास्ट वीक भी एक विंटर ब्लास्ट आया था उसकी वजह से 35,000 लोगों के पास अभी तक भी बिजली नहीं है, और खास तौर पे जो पीटर्सबरो और ओरिलिया का एरिया है वो बहुत बुरे तरीके से हिट है। हाइड्रोबन ने कहा जी कि 4,300 लोग जो है इसके ऊपर काम कर रहे हैं और 2,300 पोल्स जो थे वो टूट गए थे, यानी कि बिजली के जो पोल्स थे वो टूट गए थे, तो उनको अभी सेटअप कर रहे हैं। बहुत ही फनी बात हुई लेकिन बहुत अफसोस की ये खबर है, डोमिनिक के जो रिपब्लिक है का जो कैपिटल है उसके अंदर एक जो क्लब है नाइट क्लब उसका रूफ कलैप्स किया जिसमें 27 लोगों की डेथ हुई और 160 जो है उसके अंदर हर्ट है। इसके अंदर ये बहुत ही एलीट क्लब है, इसके अंदर पॉलिटिशियंस, एथलीट्स और बहुत बड़े बड़े लोग जो है वो आते हैं। ये वन स्टोरी जेट सेट नाइट क्लब है सेंटा डोमिनिगो में, और इसके अंदर नेल्सी क्रूज जो कि गवर्नर थे ऑफ मोंटे क्रिस्टी जो प्रोविंस है वो भी ही इज अमंगस्ट विक्टम्स। इसके अलावा जो इंजर हुए हैं वो है फॉर्मर मेजर लीग बास्केटबॉल पिचर ऑक्टोवियो डॉटल और ब्रेव वर्गेस जो लेजिस्लेटर हैं, लॉ मेकर है, यानी कि सिंगर जो है रूबी पेरेज वो उस वक्त परफॉर्म कर रही थी जब छत जो है टूट के इनके ऊपर गिरा था सबके ऊपर। चाइना जो है जी उसने आज बहुत ज्यादा स्लैम किया है यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस को, क्योंकि उसने बोला है इनको पेजेंट्स चाइना को, यानी कि किसान टाइप लोग है ना, किसान बोला है, पेजेंट्स बोला है। फॉक्स न्यूज पे ये बोल रहे थे और डिफेंड कर रहे थे ट्रंप साहब के टैरिफ्स को, और उन्होंने कहा जी कि ये जो बहुत सारा हमारे ऊपर जो लगाया जाता है ये टैरिफ लगाया जाता है उसकी वजह से हमारा टैरिफ बहुत बढ़ जाता है क्योंकि लोग हमसे कम चीजें लेते हैं और हमको ज्यादा बेचते हैं। तो मैं आपको बहुत ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो है हमने ये जो पैसा बोरो किया हुआ है चाइनीज पेजेंट से, यानी कि चाइनीज जो फार्मर है उनसे, जो कि अपना चाइनीज पेजेंट्स जो उनके जो चीजें मैन्युफैक्चर करते हैं उससे, अब जाहिर है कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा भड़क गई। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन लिन जियान जो है उन्होंने कहा जी कि मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हूं कि ये ऐसा बात कैसे कर सकते हैं, एक वाइस प्रेसिडेंट है, उसका एरोगेंस और डिसरिस्पेक्ट तो देखो जरा कि कितना खराब है, और हमको चाइना को वो ऐसे देखते हैं हमको मालूम नहीं था। और फिर कुछ लोगों ने फिर तो वो आपको पता ही है रा फिर वो शुरू हो जाता है सोशल मीडिया के ऊपर, तो बहुत सारे कमेंट्स आए। तो उन्होंने चाइनीज ने कहा कि हाँ हम तो प्रेजेंट्स हैं लेकिन वर्ल्ड्स बेस्ट हाई स्पीड रेलवे सिस्टम हमारे पास है, मोस्ट पावरफुल लॉजिस्टिक्स कैपेबिलिटीज हमारे पास है, हमारे पास लीडिंग एआई के सिस्टम्स है, ऑटोनोमस ड्राइविंग और ड्रोन टेक्नोलॉजीज हमारा कोई मैच उसमें नहीं है, कोई कर सकता है। और तो अगर ये सारा कुछ पेजेंट्स कर रहे हैं, यानी कि ये सारा कुछ किसान कर रहे हैं, फार्मर्स कर रहे हैं, तो फिर तो ये बहुत ही रिमार्केबल है, विच इज रिमार्केबल। तो वो उन्होंने बोला कुछ नहीं कि ये बहुत इंप्रेसिव है, तो इस तरह से ये है। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट स्मिथ जो हैं उन्होंने आज बहुत ही एस्टॉनिशिंग एंड दिस एक्चुअली इज बिग बिग न्यूज, उन्होंने बोला कि यूएस ईरान के जो टॉक्स है वो ओमान में सैटरडे को बिल्कुल शुरू हो सकते हैं और ये डायरेक्ट टॉक्स रहेंगे, और उन्होंने डिसमिस किया ये जो तेहरान का इंसिस्टेंस था कि हम बिल्कुल डायरेक्ट टॉक्स नहीं करेंगे। आपको पता ही है कि यूएस को वो बार बार बोलते थे कि हमको नहीं, ये गलत पिक्चर आप दिखा रहे हैं जी, ये नहीं है ये पिक्चर। तो उन्होंने कैरोलिन लेविट ने बोला कि यस दिस इज द राइट पिक्चर, उन्होंने कहा जी कि ये हमारी बातचीत इनके साथ अब जो है डायरेक्ट होएगी, क्योंकि ट्रंप साहब ने बहुत ही सरप्राइज अनाउंसमेंट किया था कि उनका जो इन एडमिनिस्ट्रेशन है वो डायरेक्ट टॉक्स करेगा व्हाइट हाउस के अंदर, उन्होंने कहा। और उन्होंने ये कहा था कि जी अगर इन्होंने हमारे साथ टॉक्स ना किए तो उसके बहुत ही खराब जो है वो आएंगे रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि इससे पहले ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराग्ची ने कहा था कि ये जो यूएस मिडल ईस्ट के एनवॉय स्टीव विटकॉफ सैटरडे को आ रहे हैं उसके साथ हम इनडायरेक्ट टॉक्स करेंगे। तो अनलेस एंड अनटिल यूएस जो है थोड़ा विलिंगनेस और गुडविल दिखाएगा, तो फिर जब ट्रंप साहब ने बोल दिया, और फिर अभी तो व्हाइट हाउस सेक्रेटरी जो है कैरोलिन लेविट उसने बोल दिया है कि जी ये जो है हम तो अब डायरेक्ट टॉक्स करेंगे, और अगर ये फेल हुए तो फिर इसके जो है बुरे वो होंगे। इसी तरह कैरोलिन लेविट ने दूसरी बात बोली कि जी ट्रंप साहब जो है वो एल सेल्वाडोर और जो इटली के जो हेड्स ऑफ द स्टेट है उनको वो वेलकम करेंगे। ट्रंप साहब ने कहा कि जी वो होल्ड करेंगे टॉक्स विद एल सेल्वाडोर्स नायब बुकेला नेक्स्ट वीक में, और बहुत वो खुश है आजकल एल सेल्वाडोर से, क्योंकि जितने भी डिपोर्टीज निकाल रहे हैं ये अमेरिका से उन सारों को इन्होंने कहा था कि एल सेल्वाडोर के जेलों में रखो क्योंकि ये गैंग के मेंबर्स हैं। तो एल सेल्वाडोर की जो नोटोरियस मेगा प्रिजन्स हैं वहां पे इनको सबको भेजा जा रहा है। हालांकि आपको पता ही है कि अमेरिका में ड्यू प्रोसेसेस होते हैं, लेकिन इस दफा इनको ड्यू प्रोसेस के बगैर ही जो है भेजा जा रहा है। इसके साथ साथ ट्रंप साहब जो है इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जियो मेलोनी को भी डीसी के अंदर वेलकम करेंगे अप्रैल 17 को, और उन्होंने कहा जी के जो ये जो कंट्रीज है ये जो चूज कैरोलिन लेविट ने ये कहा, उन्होंने कहा जी कि ये जो कंट्रीज जो चूज कर रहे हैं ये यूएस के ऊपर काउंटर टैरिफ्स लगाने का ये मिस्टेक कर रहे हैं, जो हमारे साथ बना के यानी कि चलेंगे तो उनके साथ हम भी बना के चलेंगे। जैसे अब ये लोग दो आ रहे हैं उनके पास बात करने के लिए, कल हमने आपको बताया था 50 डिफरेंट कंट्रीज के हेड ऑफ द स्टेट जो है वो अमरीका में आ रहे हैं। तो लेविट ने कहा कि ट्रंप साहब का जो स्पाइन है दैट इज ऑफ स्टील, वो कोई उसको ब्रेक नहीं कर सकता, अमरीका को भी कोई ब्रेक नहीं कर सकता है, और अंडर ट्रंप साहब का लीडरशिप कोई भी यूएस को ब्रेक नहीं कर सकता है। ट्रंप साहब का ये जो टैरिफ्स है इसने जितने भी richest पीपल इन यूएस है उनका तो बहुत ही हम यही बोल सकते हैं बेड़ा गर्क किया है। ब्लूमबर्ग का ये एक रिपोर्ट आया है कि उनका वेल्थ जो है $208 बिलियन से जो है प्लंज कर गया। ये देखें जरा, ये अमीरों की शक्लें देखें जरा, जो हमारा टीवी देख रहे हैं वो देखें कितना परेशान है ये। इसके अंदर उन्होंने कहा है जी कि वर्ल्ड्स 500 richest पीपल जो है उन्होंने ऑल टुगेदर जो है $208 बिलियन गवा दिए हैं, और ये 13 साल की हिस्ट्री में सबसे बड़ा लॉस है। उससे भी बड़ा लॉस है जो कि पेंडेमिक जो थी COVID-19 उसके बीच में हुई थी। ये जो ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट आया इसका टाइटल है बिलियनर्स लूज कंबाइंड $208 बिलियन ऑन फर्स्ट डे फ्रॉम ट्रंप्स टैरिफ्स, जो है ये इसका टाइटल है। इसमें मेटा के जो फाउंडर हैं यानी कि मार्क जकरबर्ग वो सबसे बड़े लूजर है, 9% उनका जो कंपनी के शेयर्स है वो स्लाइड किए हैं। ही हैज लॉस्ट समथिंग लाइक $17.9 बिलियन इन जो है वेल्थ। कैरवेना को के जो सीईओ है उनका भी वेल्थ $1.4 बिलियन से नीचे आया, और उनके कार्स का जो शेयर है ये जो यूज कार बेचते हैं ये लोग इनका शेयर जो है ही हैज लॉस्ट 20%। को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ शॉपिफाई जो है उन्होंने $1.5 बिलियन लूज किया, उसके शेयर 17% डाउन है। अर्नॉट LVMH ये जो लुई विटों ग्रुप है ये कॉन्ग्लोमरेट है, इसके अंदर क्रिश्चियन डियोर बुल्गरी और लॉरो पियाना है, तो ये कहते हैं जी कि इनके शेयर्स भी पेरिस में गिरे हैं और इनको नुकसान हुआ है $6 बिलियन का। चाइनीज शू मेकर हुअली इंडस्ट्रियल ग्रुप जो है दे हैव लॉस्ट $1.2 बिलियन 13% डाउन है इनके जो शेयर्स हैं। नाइकी लुलूमॉन एथलेटिका एडिडास के शेयर्स भी डबल डिजिट में नीचे आए हैं। एमेजॉन के शेयर्स प्लंज किए हैं जनाब 9% से, एंड द फाउंडर ऑल्सो हैज लॉस्ट $15.9 बिलियन। इसके साथ साथ जो स्टॉक्स है वो भी बहुत नीचे इनके आ गए 25%। टेस्ला के जो सीईओ है यानी कि एलॉन मस्क उन्होंने लूज बहुत ज्यादा किया है, अभी तक जो है वो 110 बिलियन डॉलर्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर जो है वो अभी तक लूज कर चुके हैं। तो इसीलिए हमने आपको बताया था कि दो वीक्स पहले उन्होंने ट्रंप साहब से बात किया था और अभी वो ये सारा डोज वो छोड़ के और अपना सारा ध्यान जो है अपना बिजनेस की तरफ लगाएंगे। यूएस एनर्जी सेक्रेटरी जो है क्रिस राइट, वो अब तीन जो मिडल ईस्ट के कंट्रीज है एक्सक्यूज मी उसके ऊपर जाएंगे उसकी यात्रा पे, यानी कि सऊदी अरेबिया, कतर एंड यूएई, या इससे पहले कि ट्रंप साहब जो हैं इन थ्री कंट्रीज को विजिट करें अपने ऑफिशियल फर्स्ट ऑफिशियल विजिट पे। और वो ग्राउंड वर्क करेंगे जो मिड मई में ट्रंप साहब जाने वाले हैं उसके लिए। ऑयल प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा नीचे गिर रही है और ट्रंप साहब जो है के टैरिफ्स की वजह से और ओपेक के अंदर ये बहुत ज्यादा कंसर्न है, लेकिन ट्रंप साहब जो है ये गिरते ऑयल प्राइसेस को एज अ प्रेशर यूज करना चाहते हैं प्यूटिन के खिलाफ, ताकि वो फौरन सीज फायर करे ये यूक्रेन के लिए। राइट साहब का जो ट्रिप है वो सबसे पहले वो शुरू करेंगे यूएई से, फिर उसके बाद वीकेंड पे वो जाएंगे सऊदी अरेबिया और फिर कतर में जाएंगे और लीडर्स के साथ मिलेंगे। अभी तक यूएई ने तो अनाउंस किया है कि वो 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स इन्वेस्टमेंट करेंगे यूएस के अंदर। अब ट्रंप साहब चाहते हैं कि सऊदीज जो है वो भी 1 ट्रिलियन डॉलर इन्वेस्ट करे। हालांकि सऊदी प्रिंस जो है मोहम्मद बिन सलमान, उसने 600 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया था, लेकिन वो चाहते हैं कि नहीं ये 1 ट्रिलियन डॉलर्स करे। और ये जो है राइट साहब, इससे पहले इजरायली एनर्जी मिनिस्टर अली कोहन से भी इन्होंने लास्ट वीक में मुलाकात किया था और इन्होंने जो था अली कोहन ने प्रपोज किया था कि एक ऑयल पाइपलाइन हमको बिछाने का जरूरत है जो कि सऊदी अरेबिया और इसराइल से गुजरता हुआ यूरोप की तरफ जाए। तो वो कह रहे हैं कि आप सऊदी को मनाएं, लेकिन आपको पता ही है सऊदी क्या बोल रहे हैं। सऊदी बोल रहे हैं कि आप पहले ये सीज फायर करो, ये जो जुल्म इतना कर रहे हैं उसको रोको। बस बोल ही सकते हैं और क्या कर सकते हैं, और तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सर कार्ल स्टॉर्मर जो हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने आज वादा किया है कि वो कोई भी ऐसा डील नहीं करेंगे जो कि उनके कंट्री के इंटरेस्ट के खिलाफ होएगा। उन्होंने कहा कि मैं कोई ऐसा डील साइन नहीं करूंगा यूएस के साथ जो कि यूके के नेशनल इंटरेस्ट को सर्व नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि ये जो हमारे ऊपर ट्रंप साहब के टैरिफ्स आगे हैं उसका इम्पैक्ट तो आएगा, लेकिन फिर भी हमको यूके के इंटरेस्ट को सर्व करना है। ट्रंप साहब ने उन्होंने कहा जी कि ट्रंप ने जो इंपोर्ट टैक्सेस लगाया है वो बहुत ह्यूज चैलेंज हो गया है यूके के फ्यूचर के लिए। और इसके अलावा यूके आल्सो हैज बीन हिट विद 10% बेस लाइन इंपोर्ट ड्यूटी और 25% टैरिफ तो ऑटो पे तो आ ही गया जो कि उन्होंने ट्रंप साहब ने सबके ऊपर लगाया है। तो उन्होंने कहा जी कि ये इसकी वजह से ये जो टैक्सेशन कर रहे हैं जो हमारी बिग टेक कंपनीज हैं उसको हम बोलेंगे कि बहुत सोच समझ के अब आप यूएस के साथ डील करो। ये आज बात कर रहे थे जब इन्होंने जैगुआर का लैंड रोवर फैक्ट्री जो है सुलेहुल के अंदर जो ये कर रहे थे, विजिट कर रहे थे। इससे पहले लोगों ने कहा जी कि ट्रंप साहब के पास अब गए थे, आपका क्या बातचीत वहां पे हुआ, क्योंकि उन्होंने तो अब इतने लंबे चौड़े वो लगा दिए हैं ट्रंप, मगर अब क्या कर सकते हैं, है ना। तो उन्होंने ऐसे किया तो, लेकिन उन्होंने आज पब्लिक को वहां पे कहा कि नहीं ये ट्रेड डील जो है हम बिल्कुल नहीं करेंगे यूएस से, ना ही हमारे बड़े टेक कंपनीज करेंगे जब तक कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट जो है सर्व नहीं किया जाएगा, एंड इट्स माय प्रायोरिटी, उन्होंने आज बोला। ब्रसल्स जो है जी वो प्रोवाइड करेगा यूके को न्यू डिफेंस एड पैकेज वर्थ 1 बिलियन यूएस डॉलर्स। बेल्जियन प्राइम मिनिस्टर बॉयड डी वेर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कीव में कहा, अलॉन्ग विद फॉरन मिनिस्टर मैक्सिम प्रेवॉट देन डिफेंस मिनिस्टर थियो फ्रैंकन, और वो विजिट कर रहे थे बुच्चा का एरिया इन कीव ओब्लास्ट, और इनकी मुलाकातें जो है फिर जेलेंस्की साहब के साथ भी हुई। उन्होंने कहा जी कि ये फंड्स जो है ये हेल्प करेंगे आपको परचेज करने के लिए आर्म्स, और यूक्रेन का जो डिफेंस सेक्टर है उसको स्ट्रेंथन करेंगे। जेलेंस्की ने इस मौके पर बात करते हुए बोला कि जी हम ये जो ज्वाइंट प्रोडक्शन करेंगे ब्रसल्स के साथ मिलकर वेपन्स का, और इन्वेस्ट करेंगे प्रोडक्शन में यहां पर यूक्रेन के अंदर ही। इनके साथ जो है इन्होंने 3 अग्रीमेंट्स किए हैं बेल्जियन मैन्युफैक्चरर्स के साथ, और इसकी अंडर जो है ब्रसल्स इनको देगा 2 F-16 जेट्स जिसके के स्पेयर पार्ट्स ये यूज कर सकेंगे, और 2 मोर आर एक्सपेक्टेड नेक्स्ट ईयर। इसके अलावा ये 30 F-16 फाइटर जेट्स भी इनको बाय 2028 देगा ब्रसल्स जो है। तो अभी सारे लोग इनको अब वेपन्स देते जा रहे हैं, तो ये काय को जो है रशिया के साथ, इसी तरह वो इसराइल को भी वेपन्स देते जा रहे हैं, तो इसराइल भी अब लड़ते जा रहे हैं ना, रोक नहीं रहे। इसराइल को जो अटैक है वो लोगों को जिंदा बर्न कर रहा है। इसमें एक पैलेस्टीनियन टुडे का जो रिपोर्टर है हिल्मी अल फकान, उसको जला के मार दिया अलॉन्ग विद यूसुफ अल खजीदार। ये आज रिपोर्ट आई है कि कितने सारे रिपोर्टर्स को जो मीडिया का काम कर रहे हैं उसको इसराइल मार रहा है। इसके अलावा इन्होंने जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट जो हैं हसन असली, अहमद अल आगा, मोहम्मद फाइक, अब्दुल्ला अल अथर, इबन अल बर्दीनी, महमूद अवध, इन सबको बहुत गंभीर अंदाज में इनके अटैक्स ने जख्मी किया है। इजरायली आर्मी ने आज एक्स के ऊपर बिल्कुल बोला कि हमने अटैक किया था टू कैप्चर हसन अब्दुल फतेह मोहम्मद इसलिया, इसलिए क्योंकि हमको लगता है कि ये हमास का मेंबर है और ये पोज कर रहा है कि ये जर्नलिस्ट है, हालांकि ये इसका कुछ लेना नहीं है देना नहीं है हमास के साथ। इसलिए जो है वो उसका बहुत ज्यादा सोशल मीडिया फॉलोइंग है और ये जो भी डेडली अटैक्स करते हैं उसकी वो सारी कवरेज जो है अपने उसके ऊपर डालता है। जाहिर है कि हमास को, इसराइल को ये अच्छा नहीं लगता है, तो उसको बहुत गंभीर अंदाज में जो है वो जख्मी किया है इन्होंने। इसको पहले भी कई दफा इसराइली अथॉरिटीज ने बहुत ज्यादा डराया धमकाया था, थ्रेटन किया था, और ये उस वक्त अटैक करना चाहते थे जिस वक्त ये कवर कर रहा था इसराइल का अटैक इन किबूजा। अभी तक तकरीबन 200 जर्नलिस्ट और मीडिया वर्कर्स को इसराइली फोर्सेस मार चुके हैं जब से ये अक्टूबर 2023 का जो है लड़ाई शुरू हुई है, अकॉर्डिंग टू पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट सिंडिकेट। पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है उसने इनवाइट किया है आज डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को कि वो इन्वेस्ट करे पाकिस्तान के वास्ट नेशनल और नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर। और उन्होंने कहा जी कि ये नेचुरल रिसोर्सेज खासतौर पे मिनरल्स जो हैं दे आर वर्थ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। एक टू डे पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 हो रहा है इस्लामाबाद के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान का पूरा डेट उतर सकता है अगर ये हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें और ये रॉ मटीरियल्स जो है इसको हम यूटिलाइज का फायदा उठाए। उन्होंने कहा जी कि रॉ मटेरियल्स हम बिल्कुल भी शिप आउट नहीं करेंगे क्योंकि उसका कुछ फायदा नहीं है, वो लो प्राइस पे लोग ले जाते हैं, हम फिनिश्ड प्रोडक्ट्स या सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जो है दुनिया को बेचेंगे जिसमें कि विन विन सिचुएशन रहेगा। इसकी वजह से हम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं दुनिया को कि हमको माइनिंग का इस तरह के क्रिटिकल मिनरल्स के लिए एक टेक्नोलॉजी आप ट्रांसफर करो। एंटरप्रेन्योर्स को उन्होंने आज वेलकम किया, उन्होंने कहा जी आप यहां पे हम स्किल्स सेंटर खोलेंगे जिसमें आप हमारे लोगों को स्किल्स दे सकते हैं और फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर यहां पे ये सारे फैसिलिटीज यहां पे देगी। तकरीबन 2000 के करीब लोग जो है वो इस्लामाबाद में ये एग्जीबिशन जो है मिनरल्स के ऊपर उसकी अटेंड कर रहे हैं। पाकिस्तान का जो रिच मिनरल टेरेन है ये कवर करता है 600,000 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सऊदी अरेबिया, चाइना, अजरबैजान, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, यूएस एक्जिम बैंक एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, सीईओज ऑफ माइनिंग कंपनीज फ्रॉम डेनमार्क, कीनिया, फिनलैंड, यूके जो है वो अटेंड कर रहे हैं और लग रहा है कि बहुत सारे एमओयू साइन करेंगे। अलबत्ता इसके ऊपर जो है केपी की गवर्नमेंट जो है उसके बड़े कंसर्न्स हैं, वो कहती है जी कि ये हमारे साथ तो इन्होंने कोई कंसल्ट किया नहीं है, हालांकि ये कह रहे हैं जी हम एक नेशनल कंसेंसस हमने किया है, मगर कुछ लोगों से जो बातचीत कुछ लोगों ने औरों ने जर्नलिस्टों ने सीनियर ने की है वो कहते हैं ना तो लोगों को केपी में पता है कि गवर्नमेंट ने किसके साथ बात की है, ना तो उनको सिंध में पता है, ना बलूचिस्तान में पता है, तो पता नहीं अब गवर्नमेंट ने किसके साथ बात की है, कोई अपने यारों दोस्तों में बात की होगी। तो केपी का बड़ा कंसर्न है कि अगर ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हमारे सूबे से निकाल रहे हैं, या बलूचिस्तान का कंसर्न है कि अगर बलूचिस्तान से ये सारे रिसोर्सेज निकाल रहे हैं तो उसका सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं दो प्रोविंसेज को होना चाहिए। बहरहाल अभी पता नहीं होगा कि नहीं। इसके ऊपर बात करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर जो है उन्होंने कहा जी कि हम इस पूरी चीज को बिल्कुल आर्मी जो है मिलिटरी इसको बिल्कुल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क देगी। और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के अंदर ये जो पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम हो रहा है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सिक्योरिटी यानी कि जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर है हमारे नेशनल सिक्योरिटी का, तो हम बिल्कुल सारी दुनिया को बोलते हैं कि हमारे पास आके आप इन्वेस्ट करें और हम आपको जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। और हमको इस वक्त मुल्क में इंजीनियर्स, जियोलॉजिस्ट, ऑपरेटर्स, स्किल्ड माइनर्स की जरूरत है। इस सिलसिले में उन्होंने आज बड़ी रेवलेशन की कि 26/7 बलूच जो स्टूडेंट्स हैं उनको जैम्बिया, अर्जेंटीना और दूसरे जगहों पर भेजा है टू गेट द स्किल्स टू डील विद द क्रिटिकल मिनरल्स। और वो कहते हैं जी कि आपको हम अर्ज करते हैं कि आप इन्वेस्ट करें इन रिफाइनरिंग वैल्यू एडिशन इंडस्ट्रीज और दोनों ही अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज के अंदर करें ताकि मिनरल इंडस्ट्री जो है ना वो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रह सके और हम मार्केट अपनी को अब डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। तो ये जनाब उन्होंने बातें की। इन अ ह्यूज रिलीफ टू पाकिस्तान ट्रेवलर्स, ये जो बहुत सारा वीजा रिलेटेड इश्यूज चल रहा था यूएई के साथ आज ये रिजॉल्व हो गया है और पाकिस्तान को अब 5 ईयर वीजा दिया जाएगा यूएई का। ये बहुत सारी जो बातचीत प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की और फिर इसहाक डार साहब की इनके साथ चल रही थी उससे ये ब्रेक थ्रू आया है। आज इसकी सारी डिटेल्स जो हैं अम्बेसडर हमद उबेद अल जाबी ने ये दी हैं जब उनकी मुलाकात सिंध के गवर्नर का कामरान खान पिसौरी के साथ हो रही थी। यूए के एम्बेसडर जो हैं वो इनके साथ मुलाकात किया उन्होंने गवर्नर हाउस कराची में। इसके साथ साथ यूए के जो काउंसिल जनरल थे बकीत अतीक अल रमेथी वो भी मौजूद थे। गवर्नर ने उनका शुक्रिया अदा किया कि आपने यूए ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है सिंध में, कराची में, पाकिस्तान में भी, और हमारे टाइज जो है और इससे ज्यादा बायोलेट्रल टाइज स्ट्रेंथन होंगे। कैनाल्स का इशू जो है जिसके ऊपर सिंध बहुत ज्यादा शोर मचा रहा है, ये बिल्कुल पॉइंटलेस है। आज इसका जिक्र किया राणा सनाउल्ला ने, वो एक टीवी शो के ऊपर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जी बार बार पंजाब को बदनाम किया जा रहा है कि सारा पानी लूट के ले जाएगा, लेकिन कोई भी बात प्रॉपर नहीं कर रहा है। ये जो सिक्स कैनाल्स बननी है इसमें से सिर्फ एक ही पंजाब में बनेगी और बाकी पांच जो है उनका कोई भी जिक्र नहीं कर रहा है कैनाल्स का। इसमें से दो जो है वो सिंध में होंगी और बाकी की जो है वो दूसरी जगहों पर रहेगी। तो बिला वजह जो है पीपीपी को अंडर अटैक किया जा रहा है सिंध के अंदर, क्योंकि वो रूल कर रहे हैं वहां पे, तो इसका कुछ भी फायदा नहीं है। ये बड़ा ही सीरियस कंसर्न है और हम सारे मिलके बैठेंगे, खासतौर पे पीपीपी के साथ बात करेंगे और ये सीरियस एनवायरनमेंट में ये फ्यूचर के जो मसले रिजोल्व करने की बात है वो सारी होगी। उन्होंने कहा जी कि क्या आप लोग नहीं देखना चाहते हैं कि सिंध का जो थर का डेजर्ट है वो सारा हरियाली में चेंज हो जाए, या कि पाकिस्तान का चोलिस्तान का डेजर्ट जो है वो हरियाली में चेंज हो जाए। ये पाकिस्तान का जो है ग्रीनर विजन है, तो हम सिंध और पंजाब के ये जो बड़े बड़े रेगिस्तान है इसको हम ग्रीन करना चाहते हैं, और ये सिर्फ पंजाब और सिंध के इंटरेस्ट में नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है। ये पाकिस्तान का ग्रीन फ्यूचरिस्टिक इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम ये सब करना चाहते हैं और ये इसके लिए बड़ी जरूरत है। जाहिर है कि क्लाइमेट चेंज के लिए भी ये जरूरी है। अभी झगड़ा मेन क्या है, फाइन प्रिंट तो पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा, लेकिन सिंध में तो लोग यही कह रहे हैं कि हमारा सारा पानी चोरी करके पंजाब ले जाएगा। लेकिन अगर पंजाब में एक ही कैनाल बन रहा है तो फिर सारा पानी कैसे वो चोरी करेगा, है ना, ऐसे भी है। जो पीटीआई के वर्कर्स हैं उनका आज क्लैश हुआ गोरखपुर चेक पॉइंट के ऊपर लॉ एनफोर्समेंट के लिए अड्याला जेल के पास, क्यों, और फिर बहुत सारे जो पीटीआई के वर्कर्स थे उनको डिटेन भी किया पुलिस ने, क्योंकि जो खान साहब के बहने थे अलीमा खान और उजमा खान उनको मिलने नहीं दे रहे थे ये लोग जो है वो, तो उसके लिए फिर लोग बड़े खफा हो गए वहां पे और उन्होंने बहुत सारे जो है वो नारे वारे भी लगाए। पुलिस ने कहा कि उन्होंने हमारे पे पत्थर फेंका और हमको बहुत सारा जख्मी किया। उमर अयूब जो है फिर वो आगे और उन्होंने फिर पुलिस को कहा कि नहीं नहीं हम कोऑपरेट करेंगे और इसकी जो बहन है अलीमा और उजमा उनको उनसे मिलने दो, और इसके अलावा पीटीआई के लीडर आलिया हमजा और साहिबजादा हामिद रजा को डिटेन किया पुलिस ने। तो पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने बहुत कंडेम किया इन अरेस्ट को और उन्होंने बोला जी कि हालांकि कोर्ट के बहुत क्लियर ऑर्डर्स है कि फैमिली मेंबर्स तो एटलीस्ट खान से मिल सकते हैं, तो आप क्यों नहीं मिलने दे रहे हैं, आप बहुत ही इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं। तो पायान आपको आज पता चला है ये तो कब से शुरू हुआ है अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल काम। एनीवेज तो उन्होंने कहा जी कि आप बहनों को मिलने दो। अच्छा कुछ जो वहां पे मीडिया वाले थे, अब आमिर को तो आमिर कहता है मीडिया वाले झूठ बोलते हैं, लेकिन अब देखो मीडिया वालों ने एक तो सच बोला है आमिर। वैसे देखो ये कितना ये पीटीआई वाले कह रहे थे हमें पकड़ के ले गए, डिटेन किया, ये किया, वो किया, नहीं ऐसा नहीं आज हुआ। आज मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि जी जो ये गाड़ियों में डाल के जिनको बोल रहे हैं कि डिटेन किया है अडियाला जेल से दूर ले जाके उनको छोड़ दिया और उनको बोला देखो पायन उधर जेल के पास नहीं जाना है, हुल्लड़बाजी नहीं करना है, हम आपको अरेस्ट नहीं कर रहे, आप अपने घर जाओ हैं। तो आज पुलिस ने इंसानियत दिखाई थोड़ा सा, तो ऐसे आज उनको ऑर्डर नहीं आए होंगे तो इसलिए ऐसा हुआ। आफ्टर मीटिंग एट अफगान प्रेसिडेंशियल पैलेस इन टर्म अफगान गवर्नमेंट जो है उसने अपना एक स्टेटमेंट दिया है और उसने यूनाइटेड नेशंस और दूसरे इंटरनेशनल जो बॉडीज है उनको बोला है कि तालिबान गवर्नमेंट जो है वो उनके प्राइम मिनिस्टर मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद जो हैं वो अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के गवर्नमेंट को कि जो भी हमारे आप रेफ्यूजीज भेज रहे हैं उनको बहुत ज्यादा इज्जत और एहतराम से भेजे और फुलफिल करे अपना इस्लामिक एंड नेबरली रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओ माय गॉड, मैं तो मर ही जाऊं इनकी बात सुन के, बंदा कितने जाए, मैं केड़े पासे जावा, मैं मंजी कितने डावा है जी। इस्लामिक जो है वैल्यूज को फॉलो करे पाकिस्तान और नेबरली रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाए, और आप हमारे ऊपर टेररिस्ट अटैक करते रहो और ये बिल्कुल इस्लामिक और नेबरली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वाह वाह वाह, क्या बात है, सलाम है सर आपको। तो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के साथ हमारा बहुत ही लंबा रिलीजियस हिस्टोरिकल कल्चरल टाइज है और हमारे बीच में बड़ा प्यार है, तो लेकिन आप फोर्स कर रहे हैं रिफ्यूजीज को जाने के लिए, तो हम अब इनके लिए कुछ टेम्पररी अकोमोडेशन बनाएंगे और कुछ इनको सर्विसेज देंगे और रिपैट्रिएशन प्रोसेस जो है अभी अफगान सिटीजन कार्ड वाले जो लोग हैं उनका शुरू हो गया और इलीगल जो इमिग्रेंट्स है उनको भी निकाला जा रहा है केपी से, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा से, तो ये सारा प्रोसेस अंडर वे है। तो उसमें जी इन्होंने ये जी है वो दिया। तो भाईजान अगर आप हमारे पे अटैक ना करते, हमारे से बना के रखते, तो आपके ये अफगान हमारे पास रहते रहते, हमने तो आपको कभी कुछ नहीं कहा। कब से आप रह रहे हो, कब से पाकिस्तान का खा रहे हो, फिर भी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां करते हो, तो ये तो अभी अच्छी बात नहीं है ना। ऐसा खराब पाकिस्तान का नाम खराब होता है, लोग समझते हैं जैसे पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान से कोई अगर करेगा ऐसा तो लोग तो यही बोलेंगे ना पाकिस्तान से टेररिज्म हो रहा है। होते आप लोग, नाम खराब पाकिस्तान का होता है तो ऐसे अच्छा नहीं है। ठीक है, कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है जी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने अभी एक्यूज किया है बीजेपी और आरएसएस को कि ये एक बहुत ही वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी चला रहे हैं नेशनल हीरोज के खिलाफ। और उन्होंने कहा जी ये तो लाफेबल, मुझे हंसी आता है इनके ऊपर, आरएसएस और बीजेपी के ऊपर, और ये जो मना रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का लेगेसी, तो हमको तो हंसी आ रही है क्योंकि उसको मानते वानते तो ये है नहीं। ये डाइवर्ट कर रहे हैं अटेंशन जो बेसिक इश्यूज है जिसमें कि कॉम्युनल डिवीजन ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज ये सारी बातें उन्होंने उस वक्त की जिस वक्त कांग्रेस जो है अपनी वर्किंग कमेटी का एक मीटिंग कर रहा था अहमदाबाद में, और उसका थीम था नया पाथ, संकल्प, समर्पण और संघर्ष। और वो देखना चाह रहे थे कि हम लास्ट ईयर हमारे लॉसेस क्यों हुए इलेक्शन में, और 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में जो हमारे गेन्स हुए तो किधर स्ट्रेटजी काम की और किधर नहीं की। उन्होंने आज जो मीटिंग की उसमें वल्लभ भाई पटेल का 150th एनिवर्सरी जो मनाना चाहते हैं ये लोग अक्टूबर में, उसकी कुछ तैयारी की बात की। और उन्होंने कहा जी उनका लेगेसी जो है उसको ये लोग जो है खराब कर रहे हैं बीजेपी वाले, और डिविजन पैदा कर रहे हैं ये जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल के खिलाफ बातें करके, तो ये कॉन्स्पिरेसी है। कांग्रेस जो है उसने जो है पिछले 140 ईयर से इस मुल्क को सर्व किया है, और उनकी सेक्रीफाइसेस और फाइट फॉर द कंट्री सबके सामने है। अभी ये कॉन्स्पिरेसीज पैदा करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने बहुत कुछ किया है, हालांकि इनका जीरो अचीवमेंट है और जीरो कॉन्ट्रीब्यूशन है इन फ्रीडम स्ट्रगल। तो अभी ये ऐसे हो रहा है जी। बीजेपी ने फिर जाहिर है कि अब चुप तो नहीं बैठना था, फिर बीजेपी ने भी आगे से कुछ जवाब तो देना था। बीजेपी ने जी फिर इनका जो लीडर है राहुल गांधी उसको खूब सारी बातें सुनाई, क्योंकि राहुल गांधी जी जो है बिहार के अंदर एक इवेंट हो रहा था तो उन्होंने कहा ये क्या बोलते रहते हैं ये लोग कि जी ये 1947 से इस मुल्क में संविधान आया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन आया, संविधान तो हमारा हजारों साल पुराना है। तो उसके ऊपर जनाब बीजेपी भड़क गई, उसने कहा जी हजारों साल पुराना तो नहीं है ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये तो 1947 में लिखा गया था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसने ये बनाया था। लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने ये कहा, और कांग्रेस वाले जो हैं अंबेडकर जो कि एक दलित थे उसकी लेगेसी को कम करना चाहते हैं तो इसलिए ये ऐसा बात करते हैं, और कांग्रेस इनको बिलिटल करना चाहते हैं। बीजेपी के नेशनल जो स्पोक्स पर्सन है सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने भी बोला जी कि गांधी जी अभी मुन्ने से जो है वो इंडियन लीडर है तो उनको मालूम नहीं है शायद, क्योंकि 1947 में ये संविधान जो था हमारा लिखा गया था और इसको प्रिपेयर किया गया था नवंबर 26, 1949 में, और नहीं उसको लिखा नहीं था 1947 में, उसको नवंबर 26, 1949 में लिखा था, और उस वक्त ये बहुत शायद थे नहीं तो इसलिए इनको मालूम नहीं है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो नवंबर 26 को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, लेकिन जो कांग्रेस है वो मिसलीड करना चाहती है और ये यूथ भी मिसलीड कर रहा है, और कांग्रेस को खैर इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे को मानता ही नहीं है इसीलिए उसको अपोज भी करता है। तो इसलिए इनको बताना बहुत जरूरी है कि ये ड्राफ्ट किया था 1949 में और इंप्लीमेंट किया था January 26, 1950 में, तो ऐसा कुछ हुआ। ठीक है जी, बहुत प्यार नहीं चल रहा है इनके बीच में आपस में। शान जो है सिंगर शान, उसने जनाब आज बड़े रेवलेशंस किए हैं। उन्होंने कहा जी जिस वक्त तक तो मैं अंटिल 2018 में जज करता था ये रियलिटी शोज, ये सिंगिंग के रियलिटी शोज, उस वक्त तक तो शायद कोई सिंगिंग होती थी, अभी री रिकॉर्डिंग होती है, क्योंकि उनसे क्वेश्चन किया गया कि भाई इतना बड़ा बड़ा इतने जबरदस्त गाने वाले सिंगर आ जाते हैं यहां पे बच्चे, तो उनको फिर फिल्म इंडस्ट्री में क्यों नहीं जो है वो चांस मिलता है। तो उन्होंने कहा जी ये रीडब किए हुए होते हैं गाने, क्योंकि जब हम उनको एक्चुअली में बुलाते हैं तो वो मेजर डिसअपॉइंटमेंट साबित होते हैं। अरे वाह, ये जो छोटे मियां छोटू और वो इंडियन आइडल और ये वो, उसमें जो आप गाने सुन रहे हैं उसमें तो आपको वाकई लगता है वाह 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 क्या आवाज है। अजय देवगन साहब जो हैं वो अब वापस आ रहे हैं अपनी जो फिल्म आ रही है रेड 2, उसमें एज टैक्स ऑफिसर अमय पटनायक, तो इसका आज मूवी का ट्रेलर लॉन्च था मुंबई के अंदर, तो वहां पे उनको क्वेश्चन किसी ने हंस के पूछ लिया कि सर अगर आपको सलमान और शाहरुख खान के घर में रेड करना पड़ गया तो आप क्या करेंगे। अभी उन्होंने एक स्पोर्टी क्वेश्चन बोला, आप भी एक स्पोर्टी आंसर दे दो। ना जी ना, अजय देवगन साहब तो जो है बड़े ही सीरियस हो गए। वो कहते हैं जी मुझे नहीं पता मैं कैसे मैनेज करूंगा, और अगर मुझे उनके घर पे रेड करना पड़ेगा तो मैं तो अपने ही घर पे बैठूंगा और मैं तो नहीं करूंगा। अरे ये क्या है भाईजान, व्हाट इज दिस? आपको भी मुझे लगता है गर्मी लग रहा है। अच्छा जी, ऋतिक रोशन साहब का आजकल जो है यूएस टूर चल रहा है और बहुत सारे वो शोज कर रहे हैं, मीट एंड ग्रीट अटलांटा, ह्यूस्टन, न्यू जर्सी और शिकागो में। लेकिन जो डैलस टेक्सस का शो था उसके अंदर लोग बड़े नाराज हुए क्योंकि लोगों को बोला गया कि जी आप $1500 अगर दोगे तो आप मीट एंड ग्रीट कर सकोगे ऋतिक रोशन से। तो छोटे छोटे बच्चे वहां पे आए। इस प्रोग्राम को होस्ट कर रही थी सोफी चौधरी, लेकिन लोगों ने बहुत ज्यादा आज अगर आप ट्विटर देखेंगे उस पर शोर मचाया। उन्होंने कहा जी इंतहाई बैडली मैनेज और कोऑर्डिनेटेड एंड एग्जीक्यूटेड ये शो था, हमें बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ हमारे बच्चों के लिए, हमने $1500 भी खर्च किए फिर भी ऋतिक रोशन से वो नहीं मिल सके। तो बहुत सुनाई, बहुत बैच किया है जी। और बांग्लादेश विमेन ने आज 167 रन का विक्ट्री लिया ओवर पाकिस्तान विमेन्स ए इन वार्म अप मैच ऑफ आईसीसी विमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर एट कद्दाफी स्टेडियम लाहौर। बांग्लादेश की कैप्टन जो है निगार सुल्ताना, उसने डिसाइड किया पहले जो है बैटिंग करने का और उन्होंने 276 रन्स बनाए इन 49.4 ओवर्स। स्किपर सुल्ताना ने खुद जो है 72 बॉल 70 रन्स बनाए और इसके अलावा क्रूशियल 109 रन पार्टनरशिप बनाया थर्ड विकेट में विद ओपनर फरजाना हक, और उसने बनाए 50 ऑफ 85 बॉल्स। इसके अलावा जन्नतुल फिरदौस जो हैं, वाजी वाह क्या नाम है लड़की का, जन्नतुल फिरदौस जन्नत में ढक जाएंगी, इन्होंने 46 बनाए ऑफ 34 डिलीवरीज। उमे हानी और वहीदा अख्तर जो हैं पाकिस्तान की तरफ से, उन्होंने तीन तीन विकेट्स लिए। तानिया सईद ने दो और पाकिस्तान को उन्होंने आउट कर दिया फॉर 109 रन इन 39.1 ओवर्स। पीसीबी जो है अब वो प्लान कर रहा है कि दो T20 के मैचेस फॉर द अपकमिंग पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज जो है वो बांग्लादेश में करेंगे। तो ये बांग्लादेश जो है वो टूर करेगा पाकिस्तान का थर्ड वीक ऑफ मई में, और ये लोग 5 T20 जो है खेलेंगे फ्रॉम मई 25th, 27th, 30th और फिर उसके बाद June 1st एंड June 3rd को। जो फर्स्ट टू मैचेस है वो इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में आ रहे हैं। लास्ट इंटरनेशनल मैच इस वेन्यू पे ऊपर हुआ था April 11, 2008 में, जब पाकिस्तान ने फिर भी बांग्लादेश को होस्ट किया था ODI के लिए। ODI भी खेलने थे लेकिन फिर इसको कट करके बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सहमति से फिर इसको T20 बस रखा 5 मैचेस, और 3 मैचेस जो हैं फिर वो लाहौर में खेले जाएंगे। सीरीज जो है इट इज पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन फॉर अपकमिंग एशिया कप 2025 एंड T20 वर्ल्ड कप 2026। लाहौर कलंदर्स के जो स्टार प्लेयर्स हैं डेविड वी, सैम बिलिंग्स एंड रिशाद हुसैन, कुशल परेरा, ये सब के सब इस्लामाबाद पहुंच गए हैं फॉर PSL 10। नमीबियन ऑलराउंडर डेविड जो है उसने तो सिर्फ एक ही सीजन खेला है कराची किंग्स के लिए, लेकिन वैसे वो बहुत कंसिस्टेंटली खेलते हैं कलंदर्स के साथ। इंग्लैंड के विकेट कीपर बैटर सैम बिलिंग्स जो है उन्होंने 20 PSL मैचेस खेले हैं। परेरा और रिशद जो है वो अब अपना डेब्यू करेंगे PSL 10 के अंदर। इसके साथ साथ पिशावर जेल्मी के जो स्टार प्लेयर्स हैं ल्यूक वुड एंड अलजारी जोसेफ एंड मिचेल ओ, वो भी इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। PSL जो है वो आपको पता ही है स्टार्ट हो रहा है फ्राइडे April 11 से, और ये मैचेस जो है ये रहेंगे डिफेंडिंग चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ और 2-टाइम विनर जो है लाहौर कलंदर के साथ एट रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम। एंड जनाब एब्सोल्यूटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, उसने अनाउंस किया है अपना 15 मेंबर स्क्वाड जो है उसको फॉर 2 मैच होम टेस्ट सीरीज अगेंस्ट जिम्बाब्वे स्टार्टिंग April 20th। और इसके अंदर जो एक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर बैटर है लिटन दास, ही इज आउट ड्यू टू PSL कमिटमेंट्स। जो एस पेसर हैं इनके तास्किन अहमद, वो भी मिस करेंगे ड्यू टू उनके जो एक्लीज टेंडन जो है उसको इश्यूज आ गया है। वेटरन विकेट कीपर बैटर मुशफिकुर रहीम जो है वो ही इज रिटर्निंग टू स्क्वाड। राइट आर्म पेसर तंजीम हसन साकिब जो है वो भी अब उनको मेडन टेस्ट कॉल दिया गया है, और ये रिप्रेजेंट इन्होंने किया है बांग्लादेश को 28 व्हाइट बॉल फिक्स्चर्स में, लेकिन अभी तक टेस्ट में नहीं किया है, तो अब ये टेस्ट में उनको करेंगे रिप्रेजेंट।
ये थी हमारी गर्मा गर्म ताजा तरीन खबरें
yes.
लेकिन अब हो गई है बासी
हाँ.
अब हो गई, अब आप जितना पानी डाले
हाँ.
आपको फर्क नहीं पड़ता,
नहीं वो पानी भी जो है बह जाएगा,
अब तो खत्म हो गया, नहीं अब तो डेड
डेड
डेड हो गई, अब तो उसको बस ड्रेन करें.
तुम देखते हो जो बच्चे जो गेम्स खेल रहे होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ओ आई एम सो डेड, आई एम सो डेड,
आई नो यूनी के मुंह के निकले अल्फाज हैं जो जो मैं,
और इतना उनको हम डांटते हैं कि नहीं ऐसे बोलो भाई, तुम लोग क्यों ऐसे ये बकवास किस्म की लैंग्वेज बोलते हो, आई एम डेड, ओ आई एम सो डेड, आई एम सो डेड, सी 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 आई एम सो डेड,
क्या बोल सकते हैं
अभी, क्या बोलेंगे, एक्साइटेड हो जाते हैं,
एक्साइटेड हो जाते हैं. तो फिर रात 12 बजे के बाद 104% टैरिफ आप ब्रदर चाइना पे लग जाएगा आज, और कनाडा के ऊपर 25% गाड़ियों के ऊपर
मर गए सारे.
तो मुझे चाइनीज डेड नहीं होंगे, कल ही बता रहे चाइनीज डेड
नहीं
होंगे,
वो नहीं बनेंगे, मैं वैसे ही एक उसके लिए
दे विल फाइंड अनदर मार्केट,
बेशुमार है उनके लिए मार्केट, उनको कुछ खतरा नहीं उनके लिए, बल्कि मार्केट्स खुलेंगी इनके ये टैरिफ की वजह से.
जैसे कनाडा भी बहुत सारी चीजों पे अब सोचना शुरू कर दिया ना, 200 साल से तो हम नहीं सोच रहे थे, इससे
कैनेडियन भाइयों पाकिस्तान की तरफ देखो,
जाना चाहिए इनको,
जाना चाहिए,
मुझे ऐसा लगता
है इतना बड़ा पोटेंशियल मार्केट है भाई, व्हाट इज दिस, व्हाट इज
ये आपकी बात,
इतने लायक बच्चे हैं हमारे,
जाना चाहिए,
और तुमसे ज्यादा लायक डॉक्टर हैं हमारे,
यस
पागलो जाओ उधर,
वेरी आप बिजनेस बहुत वहाँ पर
बिजनेस है, होता
है स्किल वर्कर के साथ साथ आप जाएं वहाँ कंज्यूमर मार्केट है, आप अपने प्रोडक्ट वहाँ लेके जाएं, वहाँ से प्रोडक्ट यहाँ लेकर आएं, और मैं बात कर लेंगे वहाँ हम आसिम साहब से भी,
हाँ हाँ हाँ, और तुम पहले से ही चिट्ठी भेज देना है,
ये राजी तो हो,
हाँ
ये हर एक से लड़के बैठ जाते हैं,
हर से लड़के बैठ जाते हैं, अब आसिम साहब के साथ तो इनके ये ड्रामे नहीं चलेंगे,
बिल्कुल नहीं, रशिया के साथ ये लड़ते हैं, चाइना के साथ ये लड़ते हैं, सऊदी
के साथ
ये लड़ते हैं,
लड़ते हैं, हाँ हर किसी से लड़ाई,
सिर्फ यूरोपीय यूनियन इज बड़ी नो, इससे बाहर आना पड़ेगा, अमेरिका से, अमेरिका ने हमसे लड़ लिया, अमेरिका से हमने लड़ लिया, या अमेरिका ने हमसे लड़ लिया, ये भी खत्म हो गया,
अब उन्होंने हमसे लड़ लिया, बाकियों से हम लड़ रहे,
बाकी हम लड़ रहे, बचेगा क्या,
तो क्यों
इंडिया तक से जो है वो हमारी लड़ाई रहती है,
ठीक है कोई बात नहीं है, तो पाकिस्तान के साथ अभी प्यार का पींगे बढ़ाओ, है ना,
चले. और आज किसी ने पोस्ट ऐसी मैं देख रहा था, नजर से गुजरी कि कनाडा जो है वो टॉप रैंक है, पता नहीं हैप्पीएस्ट कंट्री में से, ऐसी कुछ नजर होता ना गुजरे,
स्किपिंग गलत खबर पड़ी,
तो मैं दिल में सोच
वो कच्ची आबादी कराची होगा,
मैंने कहा कनाडा जो है वो दुनिया की हैप्पीएस्ट कंट्रीज में से कनाडा आ रहा है,
नहीं नहीं फिनलैंड है, फिनलैंड है दुनिया का हैप्पीएस्ट कंट्री, फिनलैंड है
यार, पता नहीं
क्योंकि ये कल ही मेरे बेटे ने खबर पड़ी, कहता मामा फिनलैंड चले, मैंने कहा तू इधर के पहले काम खत्म कर ले पहले, फिर फिनलैंड का सोचना,
कनाडा में
कनाडा,
जैसे मैं कहता हूँ पाकिस्तान को कुछ नहीं होने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह
इंशाल्लाह,
ऐसे कनाडा को भी कुछ नहीं होने वाला, टैरिफ तो मैंने आपको कल ही बताया 6 महीने की मार,
6 महीने के
बस, क्योंकि इनको बहुत बड़ा डिजास्टर अभी पड़ जाएगा, कंज्यूमर्स जब बाहर निकले,
ये 208 बिलियन यूएस डॉलर लूज कर लिया इसके बिलियनर्स ने, तो ये अब इसको ऐसे ड्रामे करने देंगे, और
बिलियनर्स क्यों रुके हुए, कल ऐसी एक बात हो रही थी मेरी, उन्होंने कहा कि यार डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस चीज की श्योरिटी कराई हुई है, जितने भी बिलियनर्स वहां हैं या उन्होंने आपस में मिलकर कर लिया कि जी देखो जो भी बिजनेसमैन है ना वो कभी भी लॉस की बात को पसंद ही नहीं करता, वो उसको चाहिए हमेशा प्रॉफिट,
यस.
अब आप जैसे कह रही हैं कि कितना 2 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर जो है स्टॉक एक्सचेंज भी गया, नीचे डाउन हो गया, लेकिन क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो गया कि पहले इससे पहले वो पावर में नहीं होते थे ये सारे 12